हरे कृष्णा। आप सबका इस साल के दूसरे संध्या जागृति में स्वागत है और आज की संध्या जागृति कार्यक्रम 17 जनवरी मंगलवार का दिन 15 तारीख को क्या था मकर संक्रांति है ना, तो आज आपको मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। हमारे जीवन में जो काल है ना, काल समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय के अनुसार हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे धर्म में, हर जगह अंतर होता है, होते जाता है। एक सबसे बड़ा अंतर ऐसा है कि जब सुबह उठते हैं तो मन शांत रहता है और दिन में शायद मन उद्विग्न हो सकता है, फिर शाम को हम थक सकते हैं और रात के बाद में दिमाग में बुरे विचार आते, होता है ना ऐसे, डकैती कभी होती है, लोग दारू कभी पीते हैं, हाँ ड्रग्स स्मगलिंग कभी करते हैं, रात को करते हैं, क्योंकि रात का समय उसके लिए दिमाग जो है वो विचार खराब हो जाते हैं, उस समय विचार दूषित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जल्दी सो के जल्दी उठना चाहिए, देर से सोएंगे तो उस समय जगे रहेंगे जो उस समय दिमाग के लिए खराब रहता है, उस समय सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, दिमाग शांत रहेगा, लेकिन उस समय जगे रहेंगे तो उस समय का प्रभाव आपके दिमाग पर होगा और अच्छे अच्छे लोगों के मन में भी बुरे बुरे विचार आएंगे, और सुबह के समय सो जाएंगे और सूरज ऊपर आने के बाद उठेंगे तो मन में अलग विचार आएंगे और वो अच्छे विचार नहीं आएंगे, और सूरज उगने के एक घंटा पहले उठेंगे तो आपके मन में अलग विचार आएंगे। आप लोग देखो, जो लोगों ने कभी सूरज उगने के पहले का समय देखा ही नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग दुनिया में रहते हैं, वो लोग रोज 10 बजे उठते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि भोर का समय कैसे होता है, जब सूरज ऊपर आने के पहले कैसे पक्षी आवाज़ करते हैं, हाँ और समाज वातावरण में क्या क्या रहता है उस समय, क्यों मुर्गा सुबह आवाज़ करता है, क्योंकि सुबह 3 और 4 के 5 के बीच में हवा में ऐसी लहरें होती है जो मुर्गे के गले में कुछ चेतना उत्पन्न करते हैं, गुदगुदी उत्पन्न करते हैं, उसको गुदगुदी बोलते हैं, वो गुदगुदी उत्पन्न होने से वो आवाज़ करता है और उस समय सूरज का उगय का समय आसपास में रहता है। ये सब साइंस है, हाँ ऐसा कोई बिना मतलब की चीज़ें नहीं है ये। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो लोगों को अस्थमा है बीमारी, उन लोगों को पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन अस्थमा का अटैक आता है, आपने देखा है, नर्स लोगों को देखा है कभी, ध्यान में देखो आप कभी भी, जिन लोगों को अस्थमा होता है उन लोगों को चंद्र का अमावस्या का दिन और चंद्र का पूर्णिमा का दिन जब सूरज समुद्र को भरती आती है उस समय उनको अस्थमा का अटैक आता है, क्योंकि चंद्र का समुद्र की ज्वार भाटा का और हमारे हेल्थ का भी कनेक्शन है। क्योंकि मेरी मम्मी को अस्थमा था और हर महीने में 2 बार वो बेड पे सोती थी, क्योंकि हर महीने में 2 बार, एक बार पूर्णिमा एक बार अमावस्या आती थी और पूरा दिन वो दम से भी परेशान होकर बिस्तर में पड़ी रहती थी, इसलिए हमको पूरी तरह से याद है इस बात को। उसी तरह से चंद्र ग्रहण का समय है तो दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, सूर्य ग्रहण का समय है वो दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, उसमें हम लोग बाहर नहीं निकलते घर से, मंदिर को बंद रखते हैं, भजन करते हैं भगवान का, क्योंकि समय का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये हुई, और जन्म के लिए भी आप देखते हैं ना, जन्म के समय पर क्या स्टार्स थे, कौन सी दशा है, कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, इस पर भी आदमी का जीवन निर्भर रहता है। आपके जन्म का जो नक्षत्र है उसके आधार पर आपको कई बीमारियां हो सकती है, ये भी एक साइंस है। आपका नक्षत्र देख के वो कह सकते हैं कि आपको आगे जाके ये बीमारी हो सकती है, आप सावधान रहना और इसके लिए एक प्रिकॉशन लेना पहले से, और कौन सी दवा आपको लेना है, कौन से पेड़ के कौन से पत्ते का आपको लाभ होगा, ये भी एक साइंस है। मेरे पास एक पूरी किताब है उसका, नक्षत्र और पेड़ और हमारा हेल्थ, ये तीनों का संबंध क्या है, इसका पूरी मेरे पास किताब है एक, और बहुत सुंदर सुंदर उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो उसी समय से उसी तरह से एक होता है दक्षिणायन और उत्तरायन, सूर्य का उत्तर दिशा में यात्रा करना और सूर्य का दक्षिण दिशा में यात्रा करना, ये दो प्रकार की चीज़ें हैं जो छः छः महीने का होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण आरंभ होता है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सन्स जर्नी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिगिन्स, और वो छः महीने तक चलते रहता है। फिर एक समय पर सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, और एक दक्षिणायन के अलग उत्तरायण के अंदर कई राशियाँ होती है, अलग अलग राशि में सूर्य प्रवेश करता है छः बार फिर छः बार। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि जन्म के समय नक्षत्र कौन सा है, समय कौन सा है, वो समय भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो समय पर अगर जन्म अगर अच्छे नक्षत्र में अच्छे मुहूर्त में नहीं होता है तो उस जन्म के जन्म लेने वाले व्यक्ति को खतरा होता है या तो उसके माँ बाप को खतरा होता है, या जन्म होते ही उसकी माता मर जाती है तो पिता मर जाता है, या खुद को कुछ उसके सेहत में डिफ़िकल्टी होती है। ये सब साइंस है और हम सब लोग इस साइंस के प्रभाव में रहते हैं, अगर हमको जाने या नहीं जाने। हाँ, कुछ कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये नक्षत्र क्या होता है और क्या होता है, फिर भी समय के अनुसार लोगों के जीवन में परिणाम होते रहता है। ये हमारे बचपन में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर बी एन पुरंदरे। उनको वो बहुत, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के वो डॉक्टर थे, गायनेकोलॉजिस्ट, नेहरू जी के फैमिली के वो ऑफिशियल गायनेकोलॉजिस्ट थे। उनका गिरगांव में बड़ा हॉस्पिटल था, उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो वो जितने माताओं की सिजेरियन सेक्शन करते थे उनकी कुंडली निकाल के समय देख के करते थे, वो पूरा नॉलेज था उनका इस बारे में। और वो कभी कभी सर्जरी पोस्टपोन कर देते थे और सही मुहूर्त पे सर्जरी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि गलत समय पे करने से माता मर सकती है, बच्चा मर सकता है। इतना अच्छा साइंस है। अभी ये साइंस कोई जानता नहीं, इसलिए एनीथिंग हैपेंस। उनको पता चलता नहीं कि जब मेरी बच्ची पैदा हो गई थी उस समय पे जितने बच्चे पैदा हो गए सारे NICU में गए, और किसी को फिट आया, किसी को कन्वर्जन आया, किसी को पैरालिसिस हो गया, क्योंकि तो समय ऐसा था वो शाम को 6 से रात को 11 बजे तक। जितने लोग बच्चों का जन्म हुआ हमारे हॉस्पिटल में, 3 बच्चे का जन्म हुआ उस समय, एक मेरे बच्चे का और 2 और बच्चों का, तो सब बच्चे NICU में गए और 7-8 दिन वहाँ पर कष्ट होता रहा उनको, क्योंकि वो समय पीरियड ऐसा था। तो जन्म के समय भी, किस समय आप जन्म लेते हो उस प्रकार से हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, वैसे ही मृत्यु का भी होता है। जिस समय हमारी मृत्यु होती है उस प्रकार से हमारी गति होती है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। तो आज के दिन, मतलब 15 तारीख को, हाँ, संक्रांति के दिन भीष्मदेव का शरीर छूट गया था, भीष्मदेव का देहांत हो गया था। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, मकर संक्रांति के दिन बहुत पवित्र दिन है। एक्चुअली इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण का आरंभ होता है, और इस दिन के बाद में जिनकी भी मृत्यु होती है 6 महीने के अंदर तक, वो सबकी गति जो है डेस्टिनेशन ऊपर की तरफ होता है, हायर डेस्टिनेशन। हाँ, ऑल दोज हु डाई फ्रॉम 15 January ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट 6 months, देयर डेस्टिनेशन इज टू हायर प्लैनेट्स, टूवर्ड्स द लॉर्ड, टूवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड। और दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है उनकी गति नीचे की तरफ होती है, लेकिन ये सब नियम जो है उन लोगों के लिए है जो भगवान के भक्त नहीं होते। प्लीज अंडरस्टैंड, हाँ, मैं कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको खाली एक नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन नॉलेज के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई भक्त का देहांत होता है और वो भगवान का ध्यान करता है तो वो किसी भी दक्षिणायन उत्तरायण में गया तो भी भगवान के पास ही जाएगा, और भगवान का धाम किधर है, ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर। हाँ, तो ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं उनके लिए ये उत्तरायण दक्षिणायन का जो रूल है वो लागू है, लेकिन एक बार कोई व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण कर लेता है और उसकी देहांत के समय, जैसे भगवान ने गीता में बताया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो व्यक्ति मरने के समय मुझे याद करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है, तो उस समय दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भगवान की याद करते हैं तो आप दक्षिणायन के समय भी भगवान के पास ही जाएंगे। तो नियम बदल गया ना उसके लिए। तो हर नियम के लिए एक अपवाद होता है, देयर इज ऑलवेज अ क्या कहते हैं, व्हाट इज अपवाद कॉल्ड इन इंग्लिश, एक्सेप्शन फॉर द रूल। तो हर जगह नियम होते हैं लेकिन हर नियम को कोई अपवाद होता ही होता है। तो वैसे ये नियम बताया आपको मैंने, दक्षिणायन का, उत्तरायन का, और उसका अपवाद ही बताया। लेकिन फिर भी भीष्मदेव शर पंजर पर कब गिरे थे, करीब करीब 4 महीने पहले। महाभारत का युद्ध कब शुरू हुआ था, जब गीता जयंती होती ना, होती है ना गीता जयंती, उस दिन भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया, उस दिन युद्ध का day 1 था, युद्ध शुरू होने जा रहा था। उस दिन अर्जुन को भ्रम हो गया कि अभी मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तो मेरे चाचा मामा काका सब खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे को युद्ध नहीं करना है, मैं जाऊँगा निकल के, मेरे को जंगल में जाके भीख मांगूंगा। तो भगवान ने उसको बोध देने के लिए गीता सुनाया। इसका मतलब इस साल में कभी आया था वो, तारीख 5 तारीख था ना, नहीं 6 था, 6 किस तारीख को गीता जयंती आई थी इस साल में, 6 दिसंबर को आई थी ना कि 5 दिसंबर को आई थी, 6 दिसंबर को आई थी। तो उसके आगे आप 18 दिन गिन लो, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, ठीक है। लेकिन पहले 9 दिन भीष्मदेव ने युद्ध किया था सेनापति के रूप में, तो 18 दिन में 9 दिन तो भीष्मदेव के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, और 9वें दिन में भीष्मदेव को शिखंडी को सामने करके अर्जुन ने पीछे से बाण चलाए थे और शरीर के इंच इंच में बाण डालकर उनको बाण से ही नीचे गिरा दिया था और बाण के ही बेड पर उनको सुला दिया था। तो मतलब इस साल अगर गिनेंगे आप तो 5 और 9 कितने होते हैं, 14। इस साल के गणित के अनुसार 14 दिसंबर को भीष्मदेव जमीन पर गिर गए लेकिन मरे नहीं, क्योंकि भीष्मदेव को इच्छा मरण का वरदान था। जब अपने पिताजी के लिए उसने वचन ले लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं राजा भी नहीं बनूंगा, राजा का सेवक बन के रहूँगा, और पिताजी के आनंद के लिए, क्योंकि पिताजी को शादी करनी थी सत्यवती रानी के लिए, तो उसकी वजह से उसका विवाह सत्यवती से हुआ, शंतनु जी का विवाह। और शंतनु ने अपने पुत्र पर प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि आप इच्छा मरणी होगी, मतलब अपनी इच्छा से आपकी मृत्यु होगी, आपको कोई मार नहीं सकता है। इसलिए शरीर में इतने बाण लगे थे उनके कि 1-2 बाण के बीच में एक छोटी उंगली भी नहीं घुस सकती थी, इतने बाण लगे थे, यहाँ से लेके नीचे तक, हाथ से लेके उंगली तक, पैर से लेके उंगली तक, सब जगह इतने बाण घुसे थे। वो भी कैसे थ्रू एंड थ्रू गए, सामने से घुस के पीछे से निकले थे और उस पर वो खड़े थे सब। आप खाली वो पिक्चर देख सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते कितना तकलीफ होगा उनको, कितना खून बह गया होगा उनका, कितना दर्द हो गया रहेगा उनको, कितने कष्ट और कितनी वेदना और कितनी पीड़ा हो गई होगी। फिर भी उनका देहांत नहीं हुआ क्योंकि उनको वरदान था। अब इस साल के 14 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, हाँ उस समय तो समय अलग था लेकिन कम से कम 1 महीना तो कम से कम वो वहाँ पर ही थे रणभूमि के अंदर अकेले। सब लोग युद्ध समाप्त होकर अपने घर चले गए, बाकी लोग जो मर गए थे उनके घर से लोग आके जो बॉडी लेके गए उनका अंत संस्कार भी किया उन्होंने। पांडव लोग जीत के अपने घर चले गए और घर चले जाने के बाद में भगवान कृष्ण के सामने उनका राज्याभिषेक भी हुआ। राज्याभिषेक में भगवान ने संतों के पैर धोए, सब कुछ हुआ, महाराज युधिष्ठिर राजा बने। बहुत समय बीत गया, तब तक वो उधर अकेले थे और भगवान के बड़े भक्त हैं वो भीष्मदेव, इतने श्रेष्ठ भक्त थे। उस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे लोक में उनके इतना श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं था। आप विद्या से बोलिए, शक्ति से बोलिए, शस्त्र अस्त्र विद्या से बोलिए, नीतिमत्ता के बारे में बोलिए, राज कारोबार चलाने के बारे में बोलिए, हिम्मत के बारे में बोलिए, आदर्श के बारे में बोलिए, हर चीज़ में आप मनुष्य का कोई भी गुण लीजिए, उस हर गुण के लिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति थे। और उम्र से भी सबसे बड़े थे वो, उनका उम्र 180 साल था। द्वापर युग के अंत की बात है ये, द्वापर युग के शुरुआत में आयु 1000 साल की होती है और द्वापर युग के अंत आते आते आयु कम 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 होती जाती है। तो 180 साल के भीष्मदेव बड़े बुजुर्ग माने गए थे और अर्जुन 72 साल के थे और युधिष्ठिर महाराज 80 साल के थे, लेकिन फिर भी जवान कहलाते थे क्योंकि वो समय आयु अलग थी। तो उसके पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ वो राजा बन गए, मतलब आनंद हो गया ना, आनंद, सब संकट खत्म समाप्त हो गए, युद्ध भी समाप्त हो गया, अभी संतों के हाथ में राज्य आया। महाराज युधिष्ठिर तो संत ही थे ना, वो राज ऋषि थे, वो राजा होने पर भी ऋषि के समान थे, इतने अच्छे भक्त थे भगवान के वो। तो विश्व कल्याण का शुरुआत हो गया ना। और भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की थी जब अपने पिताजी को, उन्होंने वादा किया कि मैं विवाह नहीं करूँगा और राजा भी नहीं बनूंगा और हर समय हस्तिनापुर का जो राज्य सिंहासन है उसकी सेवा करूँगा और तब तक जीऊँगा जब तक राज्य सिंहासन पर योग्य व्यक्ति राज्य करने के लिए बैठे तब तक मैं रहूँगा। तो कई पीढ़ियाँ उन्होंने देखी, चित्र विचित्र वीर शुरू हुआ उनका काम, चित्रांगद और विचित्र वीर वो मर गए, फिर धृतराष्ट्र अंधा राजा बन गया, अब पांडु राजा बन गया लेकिन जाना पड़ा जंगल में उसको, फिर धृतराष्ट्र अंधा राजा बन गया तो वो समाधान ही नहीं थे, फिर दुर्योधन युवराज बन गया, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी युवराज बन गया, तो कई साल बीत गए उसके अंदर, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, कई पीढ़ियाँ देखी उन्होंने और आखिर में उनकी इच्छा थी कि ये पांडव जो हैं ये राज्य कारोबार करने के लिए सही योद्धा हैं, क्योंकि भक्त भी भगवान के हैं, नीतिमान हैं, सद्गुण संपन्न हैं और क्षत्रिय भी हैं, बलशाली भी हैं, सब कुछ है उनके अंदर। लेकिन उनको राज्य करने समय देखने के लिए बहुत समय गया बीच में, महाभारत का युद्ध भी हो गया, पूरा विश्व का भयंकर हाहाकार जैसा संहार हो गया, उसके बाद राजा बन गए। तो ये क्यों विनती करें, उन्होंने वादा किया था कि मैं जब तक राज्य सिंहासन पर योग्य व्यक्ति बैठा हुआ नहीं देखूंगा और पूरा विश्व सुरक्षित हाथों में नहीं देखूंगा तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और ये भगवान कृष्ण को पता था, इसलिए राज्याभिषेक होने के बाद में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले धर्मराज को कहा कि आप सब लोग राजा के वस्त्र पहनो, राजा तो बन ही गए हो आप लोग, क्योंकि पांच भाई बाकी मंत्री बन गए, धर्मराज राजा बन गए, अच्छे वस्त्र पहनकर आप रणभूमि पर चलो जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और वास्तव में आप सोचेंगे, अरे कोई अगर मर रहा है व्यक्ति, समझो आपको हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आपका रिलेटिव मर रहा है, तो आप वहाँ पर सज धज के जाएंगे क्या, जितना सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे आप, क्योंकि कोई फेस्टिवल थोड़ी है, फेस्टिवल कोई मर रहा है थोड़ी फेस्टिवल है, दुख की घटना है, कोई बहुत मरने की घटना में गया हुआ है, तो आप लोग उसको मिलने के लिए सिंपल कपड़े पहन के जाएंगे, कोई जेवर भी नहीं पहनेंगे क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने जानबूझकर उनको कहा कि आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे अलंकार पहन के, राज वस्त्र पहन के चलो, क्योंकि आपको राज वस्त्र में सजे हुए देखने के लिए वो तड़प रहे हैं। उनके जीवन की आखिर तमन्ना यही है कि आपको राज वस्त्र में सजे हुए देखना है उनको, उनके जीवन का उद्देश्य था एक, जिसके लिए वो जीवित थे इतने साल तक। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, हमारा हॉस्पिस में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सब मरने वाले लोग आते हैं जिनका 6 महीने के अंदर मृत्यु होने वाला है, ऐसे मरीज हमारे पास भर्ती होते हैं वृंदावन में, हमारे राजीव जी वहाँ से आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनकी जो भी इच्छा है उनकी पूरी करते हैं, हाँ गंदी इच्छा नहीं, अच्छी इच्छाएं जो भी पूरी करते हैं, अरे माता जी को मिलना है, मौसी को मिलना है, बड़े बेटे को मिलना है, या कुछ और किसी को दान देना है कि संस्था में डोनेशन देना है उसको, वो सब इच्छा पूरी करते हैं। जैसे हमारे बीच में हॉस्पिटल में एक मेरे पास फोटो है, उसके अंदर ना एक ऐसे हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू में एक औरत है, वो ऐसे एकदम आईसीयू में उसका वेंटिलेटर लगा है, बहुत सारे ट्यूब्स लगे हैं, एकदम ऐसी मरणासन्न अवस्था में है, और एक लड़का और एक लड़की नई नई शादी करके पूरा गार्लैंड पहन के, पूरा फेटा पहन के, राजवस्त्र शादी का वस्त्र पहन के, दुल्हन का वस्त्र पहन के उसके पास खड़े हैं, और दुल्हन को वो माता जी जो है वो गले में हाथ लगा रही है, गाल में प्रेम से, क्योंकि जो दुल्हा था वो उसका लड़का था और दुल्हन उसकी बहू थी और उसकी इच्छा थी कि मरने के पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो जिस दिन शादी हुई उस दिन माँ आईसीयू में थी, मरणासन्न अवस्था में थी, और उस दिन शादी वैसे ही ड्रेस में, शादी से हॉल से ही वो लोग आईसीयू में आ गए एकदम सज धज कर, पूरा दुल्हन बनकर, दूल्हा बनकर, और माता जो है बड़े प्रेम से दूल्हा बने हुए अपने बेटे को देख रही है और दुल्हन बने अपनी बहू को देख रही है और गले में गाल में ऐसे प्रेम से हाथ लगा रही है, मेरे पास उसकी फोटो है। और उसके बाद में उसका देहांत हो गया, क्योंकि वो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का विवाह होगा ऐसे मैं देखूंगी। तभी बोलेंगे माँ मर रही है और इतना सजग के क्यों जा रहे हो, नहीं माँ की वो इच्छा थी आपको देखने की दुल्हा के रूप में। उसी तरह से भीष्मदेव की इच्छा है पांडवों को राज्य कारबार हाथ में लिए हुए राजा बने हुए देखने के लिए, तो सब लोग सज धज के रणभूमि पर जाते हैं जहाँ पर इतने समय से शरशैया पर, बाण की शैया के ऊपर भीष्मदेव लेटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो उनकी एक इच्छा थी और दूसरी इच्छा थी उनकी कि भगवान को दर्शन करते हुए मैं शरीर छोड़ दूँ। तो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं पहले, तो उसके पहले जब युद्ध होता है भीष्मदेव गिर जाते हैं तो अर्जुन उनको बाण मारकर गंगा जी से जल देते हैं, बोलते हैं प्यास लग रही है पानी पिलाओ। तो दुर्योधन कहता है जाओ तंबू में तुरंत पानी लेके आओ, दुशासन जल्दी जाओ। तो भीष्मदेव कहते हैं मैं योद्धा हूँ और रणभूमि पर गिर चुका हूँ, मुझे नल का पानी नहीं चाहिए, मुझे गंगा जी का पानी चाहिए जमीन से निकला हुआ। तो उस समय अर्जुन बाण निकालते हैं और बाण पर मंत्र बोलकर जमीन पर मारते हैं और वहीं से गंगा जी उत्पन्न होती है और गंगा जी का जो पानी है उनके मुंह पे गिरता है। और गंगा जी कौन है, उनकी माता है, गंगा देवी शंतनु की पत्नी थी, उनको 8 बालक हुए थे, 7 बालक को उसने पानी में छोड़ दिया था और 8वां बालक भीष्मदेव था, उसका नाम था देवव्रत उस समय। तो उस समय शरशय्या पर गिरने के बाद में दोबारा माता और पुत्र का मिलन होता है और गंगा जी का जल पीते। एनीवे वो तो बैक की हिस्ट्री हो गई। ये पहुंचने के बाद में राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर भीष्मदेव को बड़ा आनंद होता है, फिर अर्जुन को देखते हैं, फिर भीमसेन को देखते हैं, नकुल सहदेव को देखते हैं, सबको देख के बड़ी खुशी होती है उनको, सारा उनका कष्ट निकल जाता है कि चलो इसके लिए मैंने इतना कष्ट सहन किया, इतना बेर इंतज़ार किया, वो आज इच्छा पूरी हो गई। फिर भगवान है ना, अपने भक्त भीष्मदेव का गौरव लोगों को देखना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, उनको कहते हैं अभी इनको आप उपदेश करो, अभी कोई मरणासन्न अवस्था में है तो उसको कुछ काम देंगे कि आप लोग कुछ काम करो, अभी आप लेक्चर दे दो। मुझे बोलेंगे अगर मैं ICU में एडमिट हूँ, प्रभु जी आज ट्यूसडे है आपको लेक्चर देना है, मतलब तो कैसे लेक्चर दूँ, इधर आके माइक्रोफोन लगा दो, यहाँ पर स्क्रीन लगा दो, मैं वहाँ से लेक्चर देता हूँ, लेकिन बहुत कष्ट होगा ना प्रभु जी, इतना ट्यूब लगा हुआ है, बीमार हूँ। वैसे ही अवस्था है भीष्मदेव की, हाँ इतना खून बह गया होगा, इतने एक एक बाण से कितना खून बह गया होगा उनका, लेकिन फिर भी शक्ति थी उनके अंदर जिंदा रहने की, वो जिंदा थे। कितने कमज़ोर होंगे वो, कितने कष्ट में होंगे, पीड़ा में होंगे, एक एक इंच इंच के अंदर बाण घुसा हुआ है। हम किस थोड़ी सुई लेते, कल मेरा थोड़ा सा उधर पिकनिक में लग गया, 2 पट्टी लगी हुई है, अभी भी जल रहा है उसके अंदर, कितना दर्द हो रहा है, हाँ कोई खून नहीं निकला, खाली चमड़ी निकल गई है। उनके एक एक इंच के अंदर से अर्जुन के बाण घुसे हुए थे, जो भयंकर बाण, वज्र का शरीर था उनका, वो छेदने की शक्ति किसी के बाण में नहीं थी, वो केवल अर्जुन के बाण में शक्ति थी। उतने भयंकर शक्ति से बाण मारे थे और वो थ्रू एंड थ्रू गए थे, यहाँ से वहाँ आर पार निकल गए थे। तो कितने कष्ट में होंगे जरा इमेजिन करो आप, आपके ऐसा इमेजिन करो कि आपके मतलब एक बाण घुसा हुआ है यहाँ से यहाँ निकला हुआ है और वो एक महीना आपके हाथ में ही है, निकला भी नहीं गया उसको, बाहर से ऑपरेशन नहीं किया उसको, ऐसे रखा है, तो कितना कष्ट हो गया आपको, सोचो आप कितना उसमें इन्फेक्शन, कितना दर्द होता रहेगा। ऐसी दर्द भरी अवस्था में भगवान उसको बता रहे हैं कि अभी तुम नए नए राजा बने महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करो कि राज चलाना कैसे है, नीति कैसे बतानी है, हाँ राज का धर्म क्या है, युद्ध का धर्म क्या है, सब बताओ उनको, एक राजा के लिए जानना क्या क्या आवश्यक है वो सब समझा दो। और भीष्मदेव इतने दर्द में भी, इतने शरणागत भक्त है भगवान की आज्ञा सर पर रखे, पूरा महाभारत में आप पढ़ेंगे ना तो भीष्मदेव के उपदेश का बड़ा चैप्टर है, पूरा एक खंड है, खंड पूरा, खंड मतलब कई अध्याय होते हैं उसके अंदर, और कई श्लोक है उसके जो भीष्मदेव ने धर्मराज को बताए उपदेश के रूप में कि राज्य में पुरुषों को कैसे चलाना चाहिए, गायों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, खेती का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करना चाहिए, युद्ध में कैसे कैसे नियम होते हैं, ना युद्ध के समय कैसे नियम होते हैं, अन्न धान्य का जो वितरण है वो कैसे होना चाहिए, सब कुछ, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है लोगों से, लोगों के लिए क्या क्या सुविधा देनी होती है राजा के रूप में, न्याय कैसे करना है, कोई अगर गुनाह होता है तो न्याय देने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, ये सारी चीज़ वो बेचारा व्यक्ति बाण के ऊपर सो के बता रहा है। ये गौरव है उनका कि भगवान के लिए भक्त जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, भगवान के लिए उनका आदेश हो तो वो कुछ भी कर सकता है, एक आखिरी बूंद अगर खून का बचेगा तभी भी भगवान की आज्ञा पूरी करने के वो तत्पर रहेगा। और उसके बाद में जब सारा उपदेश खत्म होता है तो सब लोग पैर छूते हैं भीष्मदेव के, उनको जल देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। भीष्मदेव बड़े हृदय से, हाँ ऐसे हाथ उठाते ना तो हाथ में ऐसे 500 बाण लगे हुए हैं, ऐसे हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद देते हैं, सब जगह बाण, उसे बाण के हाथ में हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद देते हैं। उस समय जो उनकी खुशी थी वो इतनी अधिक थी कि उनके दर्द से भी वो आगे थे, इसलिए वो दर्द का परिणाम उसके ऊपर नहीं हो रहा था। बड़े शांति से, बड़े प्रेम से उन्होंने पंच पांडवों को उपदेश किया। उसके बाद में उनके पैर के पास आखिर में भगवान कृष्ण आए और पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि लौकिक अर्थ से मतलब समय के अनुसार वो भीष्मदेव से छोटे थे उम्र में। मनुष्य के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया है तो वो भगवान स्वयं, लेकिन उनके वो क्या कहते हैं उसको, कुंती देवी उनकी बेटी समान थी, उसके क्या कहते हैं उसको, भतीजे थे वो, कुंती के भतीजे थे। वसुदेव उनके पुत्र के समान थे और ये उनके पुत्र हैं, मतलब उनके ग्रैंड सन के जैसे थे वो, और उनको पितामह मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर कहते थे। तो आके उन्होंने प्रणाम किया। जैसे जब भगवान कृष्ण पांडवों को मिलते थे तो धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़े थे। अर्जुन को गले लगाते थे, भीमसेन को प्रणाम करते थे, और नकुल सहदेव उनको प्रणाम करते थे। पांच भाई हैं, लेकिन जब उनको मिलते थे दो भाई प्रणाम करते थे, दो भाई गले मिलते थे, एक भाई को दंडवत करते थे। वैसे ही भगवान कृष्ण उनसे उम्र से छोटे होने की वजह से उनको प्रणाम करते हैं और पैर के पास ही खड़े रहते हैं, ताकि पैर के पास खड़े रहने से उनके चेहरे से उनका दर्शन ठीक से हो। और उस समय भगवान के चेहरे को देखते हुए, आंखों में प्रेम के अश्रु लेते हुए, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करते हुए, भगवान के ध्यान में मग्न होकर भीष्मदेव शरीर छोड़ देते। तो ये आदर्श मृत्यु कहा गया है। सही समय पर उत्तरायण होने के बाद जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके लिए भी आदर्श है वो, क्योंकि उत्तरायण को उन्होंने वेट किया उत्तरायण तक। उसके बाद सारी इच्छाएं पूर्ण करते हुए, भगवान के आदेश को पूर्ण करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के बारे में स्मृति याद करते हुए, प्रेम भरे हृदय से धन्यवाद की भावना से वो पधार गए शरीर छोड़कर। ये संक्रांति के दिन हुआ। ऐसे ही एक मृत्यु उसके बाद में कलयुग में हुई थी हरिदास ठाकुर की। जब हरिदास ठाकुर का मृत्यु हो गया तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने याद दिलाया कि जैसे भीष्मदेव का देहांत हो गया था उनकी इच्छा के अनुसार, वैसे ही ठाकुर हरिदास जी भी उनकी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से भगवान को बुलाकर, भगवान के पैर अपने हाथ में रखकर, भगवान का चेहरा मुख से निहारते हुए, आंखों में अश्रु लेकर ठाकुर हरिदास ने शरीर छोड़ दिया था भगवान की गोद में। सोचो आप इतना भाग्य उनका, ये भी वैसा ही है और वो भी इनके जैसा है, ये इनके जैसा है। तो इस तरह से बहुत ही दिव्य मृत्यु जो है वो संक्रांति के दिन भीष्मदेव की हो गई थी। इसलिए वैसे भी पवित्र दिन है और भीष्मदेव के उस दिन मृत्यु होने की वजह से और पवित्र हो गई है वो दिन। और दूसरी घटना यह है इस दिन की कि मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के अवतार हैं, वही कृष्ण भगवान जो भीष्मदेव के सामने खड़े थे वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। और कृष्ण भगवान के जीवन में जो शरण आ गए हैं उनको ही वो पार कर देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जो शरण नहीं भी आए हैं उनको भी पार कर देते हैं, जो पतित से पतित हैं उनको भी पार कर देते हैं। उनका अवतार ही उसके लिए है, महावदन्याय अवतार बताया गया है। और वो अवतार इसलिए हुआ है कि कलयुग में लोगों के पास कुछ गुण नहीं है। हाँ, ऐसे कहा गया है कि सत्ययुग के शुरुआत में 100% सद्गुण होते हैं लोगों के अंदर, सत्ययुग समाप्त होते होते 25% सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और कितने बचते हैं 75% त्रेतायुग के शुरुआत में, जहाँ पर राम भगवान का अवतार हुआ था। वो युग की समाप्ति तक क्या होता है और 25% सद्गुण जो है नष्ट हो जाते हैं, और द्वापर की शुरुआत में 50% सद्गुण बचते हैं, 50% दुर्गुण निर्माण होते हैं। जिस युग में भगवान आए थे, लेकिन शुरुआत में नहीं आए थे भगवान, द्वापर के अंत में आए थे। तो द्वापर युग की शुरुआत से जब भगवान का अवतार का भी समाप्ति हो गई, भगवान चले गए वापस, तब तक और 25% सद्गुण खत्म हो गए। तो कलयुग के शुरुआत में कितने बचे? 25। हाँ बोलो प्रभु जी, कितने बचे? बोलो बोलो कितने बचे, आपको ही पूछ रहा हूँ, कितने बचे? 25। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आपके लिए बता रहा हूँ सब कुछ, गणित हाँ ध्यान से सुनना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ। 25% गुण बच गए और 75% गुण नष्ट हो गए। और जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है 25 भी कम होते जा रहा है, 20, 19, 18, 17, 15, 10, 12 हो जाएगा और एक दिन जीरो हो जाएगा। क्या प्रूफ है इसका? इतना झगड़ा करते लोग आजकल, ट्रेन में खाली पैर रखा तो भी झगड़ा करते, मारा मारी कर देते हैं। हाँ, अरे किसी ने बैट का बॉल मार दिया और बॉल वापस नहीं दिया इसलिए खून कर देते, इट्स अ फैक्ट, पेपर में पढ़ो आप। माता ने वो चैनल लगाने को नहीं दिया जो उसको देखना था, इसलिए बेटी अंदर गई और गले में फांस लगा दिया उस, हकीकत है ये। हमारे मंदिर में वो माता जी आती है, रोती है वो तो, कि कैसी मूर्ख माता थी मैं, एक चैनल देखना था उसको, मुझे कुछ देखना था तो मैंने नहीं बोला मुझे देखना यही है, तो लड़की को गुस्सा आ गया, लड़की बहुत जवान थी, 15 साल की थी, उसको बहुत गुस्सा आ गया, वो कमरे में गई, गले में फांस लगा के मर गई। तो माता ने पश्चाताप किया, बोले क्या फ़ायदा है पश्चाताप करके, चली गई लड़की तुम्हारी। मतलब इतना समय खराब आ गया है हाँ, कि बहुत बहुत तुच्छ कारणों के लोग खून खराबा करते हैं, आत्महत्या भी कर देते हैं, क्या नहीं करते। दो भाई, दो बहन, पति पत्नी, माता पिता, माता बालक, पिता बालक, ये सब जोड़ी में लोग एक दूसरे का जीवन समाप्त कर देते हैं कुछ कुछ कारण के लिए, और स्मृति नष्ट हो गई है हमारी, वो याद नहीं रहता है कल क्या खाया था आपने दोपहर को सब्जी, याद नहीं आएगा हाँ, कल की बात का याद नहीं आती है हाँ, कल कौन सी पैंट पहनी थी शाम को आपने, वो ही आपकी याद नहीं आएगी, क्योंकि समय ही ऐसा है। समय का और एक प्रभाव ऐसा है कि कलयुग में किसी को याद नहीं रहता है, और आयुष्य भी कम हो गया है। कलयुग की शुरुआत में 100 ईयर्स का लाइफ था, द्वापर की शुरुआत में 1000 साल का लाइफ था, वो द्वापर के अंत में जब भीष्मदेव भी जीवित थे उस समय कितना आयु था, 180 साल, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, 200 के अंदर मृत्यु। जो आज 50 के अंदर मृत्यु होती है, 25 के अंदर मृत्यु भी होती है हार्ट अटैक से, जो हमारे बचपन में हार्ट अटैक जो था ना वो 70-80 साल की उम्र को होता था। हमारी बिल्डिंग के अंदर हमने देखा है 25 साल के अंदर नई नई शादी होकर लड़का घर आया, एक महीने में हार्ट अटैक आके मर गया, 25 ईयर्स का जवान लड़का, हो सकता है डायबिटीज़ 20 साल के अंदर होता है, 25 साल के अंदर ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट डिजीज आता है, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेल्यूर, सब कुछ होता है, क्योंकि आयु जो है ना वो कम होती जा रही है। अभी एवरेज मालूम है आपको लाइफ क्या है, 57 ईयर्स, वो भी 10 साल पहले की बात है, अभी आज की नहीं। और डॉक्टर लोगों की आयु एवरेज आम जनता से भी कम होती है, अगर आम जनता की एवरेज आयु 57 साल है, डॉक्टर की 45 ईयर्स होती है। इतना सारा टेंशन, स्ट्रेस, दिन रात काम करना, सोने को नहीं मिलना, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, दिन रात भाग रहे हैं, तो एक तो याददाश्त रहती नहीं है, आयुष्य भी कम हो गया है, और छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर देते हैं। कोई झगड़े के कारण की जरूरत ही नहीं है, नो रीजन रिक्वायर्ड, फाइटिंग कॉन्स्टेंटली, ये कलयुग का वर्णन दिया गया है। तो ऐसे समय पर भजन करने की प्रवृत्ति जो है, भगवान का पूजन भजन करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी नष्ट होती जाती है। ऐसे कहते हैं कि द्वापर युग के पहले, मतलब द्वापर युग तक, कलयुग के पहले देवता लोग पृथ्वी पर आया करते थे, लेकिन कलयुग में वो पृथ्वी पर नहीं आते, दर्शन भी देते नहीं किसी को। उसके पहले आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे महाभारत का इतिहास पढ़ेंगे तो नारद मुनि भी आ रहे हैं, व्यास मुनि आ रहे हैं हाँ, इंद्र आ रहे हैं, चंद्र भी आ रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं उनसे, यज्ञ में आ रहे हैं, उसमें आहुति स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कलयुग के शुरुआत होने के बाद कोई नहीं आता है, क्योंकि समय इतना खराब है, खून खराबा, नीतिमत्ता सब नष्ट होती जा रही है। तो ऐसे समय पर लोग भगवान की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई गुण बचे ही नहीं है, अच्छे गुण नहीं तो भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे बुरे समय पर लोगों को भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और किस लिए अवतार लेते हैं, कि बिना कष्ट के भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए हजारों साल तक ध्यान करना पड़ता था, जैसे वशिष्ठ मुनि ने किया, वाल्मीकि ने किया, विश्वामित्र ने किया, 60,000 साल तक किया, तब भगवान की प्राप्ति हुई। फिर त्रेता युग में सब लोगों ने यज्ञ करना आरंभ किया, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ हाँ, और कई प्रकार के यज्ञ होते हैं वो जो कई हजारों साल चलते हैं, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। उसके लिए 1008 कुंड लगाते हैं और कई शुद्ध घी, टनों टन घी डालते हैं उसके अंदर, और मंत्र से अग्नि यज्ञ का अग्नि उत्पन्न करते हैं। हम भी यज्ञ करते हैं लेकिन माचिस से लगाते हैं हाँ? उस जमाने में एक मंत्र बोलकर यज्ञ कुंड में अग्नि उत्पन्न करते थे, और वो अग्नि बुझती नहीं थी कभी, क्योंकि अग्नि की जो व्यक्ति देव है, अग्नि देव है ना, वो स्वयं आते थे और वहाँ रहते थे जब तक यज्ञ चल रहा है, तब तक कई साल तक। और आज तक वो घी भी नहीं मिलता है और लकड़ी भी गंदी रहती है। हाँ, और जो हम लोग ना शेरी काउडंग केक बनाते हैं ना, वो भी गंदा रहता है। वो गाय का और भैंस का जो गोबर होता है मिक्स होता है, उसके अंदर वो मिट्टी मिलाते हैं और देते हैं हमको, सब कुछ गंदा होता है। तो यज्ञ भी नहीं कर सकते हम लोग, ध्यान भी नहीं कर सकते। हमारा मन कहाँ एक जगह पर है, या अभी यहाँ पर है तो कभी वहाँ पर है। अभी हम लोग कथा में बैठे हैं तो आपका कहीं का मन घर पर रहेगा, कहीं का मन इंग्लैंड में रहेगा, कहीं का मन चर्चगेट में रहेगा, कहीं का हॉस्पिटल में रहेगा, कहीं का आईसीयू में रहेगा, कुछ कुछ सोचते रहेंगे हम। हमारा मन एक जगह पर रहता नहीं है, तो ध्यान क्या करेंगे हम? ध्यान करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, घर दार पैसा परिवार सब छोड़कर ध्यान करना पड़ता है। वो इम्पॉसिबल है कलयुग के अंदर। फिर द्वापर में मंदिरों की पूजा, इतना सारा विधि नहीं कर सकते हम लोग। तो कलयुग में ना ध्यान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना भगवान की विग्रहों की पूजा कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ करने की योग्यता ही नहीं, कुछ साधन भी नहीं है, और हमारी योग्यता भी नहीं है। स्मृति श्लोक भी याद करने को हमारा दिमाग नहीं चलता है, याद किए हुआ श्लोक भूल जाते हैं, ये दोबारा याद करना पड़ता है, वापस पढ़ना पड़ता है उसको। ऐसे समय पर भगवान क्या बोलते हैं, चलो ध्यान भी मत करो, यज्ञ भी मत करो, और मंदिरों की पूजा भी मत करो, कुछ भी मत करो, फिर करना क्या है? केवल मेरे नाम का जप करो बस। मैं आपको मेरा नाम दूंगा, वो कैसे होगा? उसके अंदर सारी मेरी शक्ति अर्पण की होगी, मैं खुद उसमें रहूंगा, मैं अपने आप को नाम के अंदर फिट कर दूंगा पूरी शक्ति के साथ में। मैं आपको क्या करना है, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको केवल उस नाम का जप करना है। और वो नाम का जप करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए ना, प्रेरणा की, तो कैसे हम करेंगे बिना प्रेरणा के? तो वो नाम देने के लिए स्वयं आ जाते हो। कभी होता है ना ऐसे, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु होती ना, वो देने के लिए मालिक खुद आता है, आपको चार वस्तु बांट देगा। शादी होगी ना, शादी में तो हॉल में जाना होगा तो सब वस्तुएं बांट देगा, तुम ले लेके जाओ, तुम ये लेके जाओ, तुम लेके जाओ, तुम टैक्सी से जाओ, तुम टेम्पो से जाओ, सब देता है। लेकिन जो गहने होते हैं ना, गहने अपने दुल्हन के, अपने पास लेके जाके खुद जाके हॉल में दुल्हन को दे देता है, अपने बेटी को साथ लेके जाता है, दुल्हन के जेवर और कैश भी जो है वो खुद के पास रखता है, और टैक्सी में बैठ के अपनी बेटी को लेकर, दुल्हन को लेकर हॉल में पहुंचता है और वहां पर डिलीवर करता है। क्योंकि वो शादी में जितने भी साहित्य है उसमें से रुपया और गहने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मालिक क्या करता है, अपने हाथ से उसको लेके जाता है। वैसे कलयुग में बहुत सारा दिया आपको, हवा दिया, पानी दिया, समुद्र दिया, नदी दिया, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो देने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु जो है उनका खुद का नाम वो स्वयं लेके आते हैं। और वो नाम कैसा है, गौलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। उनका जो धाम है गौलोक धाम, सबसे ऊंचा वैकुंठ की भी ऊपर है वो, उस धाम का जो प्रेम का सार है वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में वो नीचे लेके आते हैं। हम लोग कैसे करते हैं बॉम्बे में, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड, बहुत वैल्यू है ना उसको, क्या है, इम्पोर्टेड है ना, वो अपने इंडिया में से शर्ट बनता है, यहाँ से वो अमेरिका लेके जाते हैं, उधर स्टैम्प मारते हैं मेड इन न्यूयॉर्क, और वो शर्ट हमको ही बेचते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क से लेके आए, फिर टर्न करके देखते हैं ना पीछे से तो क्या, मेड इन भिवंडी। ये मैंने बनाया हुआ जोक नहीं है, ये असली चीज़ है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, भिवंडी में जो कपड़ा बनता है ना पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, खाली वो स्टैम्प नहीं लगाते अपना, स्टैम्प वो कंपनी लगाती है। हाँ, अलग अलग रीड एंड टेलर्स, अलग अलग दो अमेरिका के कंपनीज है ना, वो अपना स्टैम्प मारते हैं उसके ऊपर, अपना लाइन लगाते हैं और पैक करके उसको अपने नाम से बेचते हैं। लेकिन माल सब ऐसे ही चाइना में और इंडिया में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में बनता है। तो हम लोगों को इम्पोर्टेड वस्तु में बहुत इंटरेस्ट है, करें इम्पोर्टेड है, टर्न करके देखें तो मेड इन चाइना, लेकिन हमको चाइना का चाहिए। हम और जापान का माल आता है ना, जापान में भी चाइना का बन के स्टैम्प लगा के बॉम्बे में आता है, लेकिन वो होता है चाइना का, कुछ ज़्यादा टिकता नहीं, वो दो तीन महीने में ख़राब हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए वो। तो हम लोगों के अंदर इम्पोर्टेड माल के लिए बहुत रुचि है, और भगवान का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वस्तु है, क्योंकि वो ना अमेरिका से आ रही है, ना चाइना से आ रही है, ना जापान से आ रही है, ना वैकुंठ से भी नहीं आ रही है, वो गोलोक वृंदावन से आ रही है। वो वस्तु जो है भगवान ने स्वयं अपने धाम का जो टॉप मोस्ट माल है वो अपने हाथ से लेकर, उन्होंने अवतार लेकर सबको बांटा हुआ है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट माल है ये, जो भगवान ने अपने धाम से खुद के हाथ से ला के डिलीवर किया इधर। और क्या महत्व है इसका, इसको खाली उच्चारण करने से, क्या बोलते हैं भगवान, केवल हरिनाम लो, हरिनाम 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 एव केवलम। और क्या बोलते हैं, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, और कलयुग में कोई गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, कोई अन्य गति नहीं बोलते वो। और क्या बोलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट होते ना बात, तो हम लोग उसको दो तीन बार दोहराते हैं, सुनना बराबर से आपको। 11 बजे आपको आना है दादर स्टेशन पे, कहाँ पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। क्या बोला आपने, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। क्यों बोलते बार बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए उसको रिपीट करते हैं। तो भगवान भी बोल रहे हैं हरे नाम एव केवलम, ऐसे बोलते हैं हरिनाम और हरिनाम हरिनाम केवल हरिनाम, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीन बार बोलते हैं नास्ते व नास्ते व नास्ते। और वो देने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। और कैसी चीज़ है वो जप करने से भगवान का नाम, अरे चाहे आप राम का नाम लो, कृष्ण का लो, हाँ क्राइस्ट का लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम है वो लो, उससे क्या लाभ है, उससे न केवल हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान का धाम और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होता है हमको, इतना आसान बना दिया है, लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जनी न अनुराग दुर्दैवम इदृशमिहा, जनी न अनुराग, मतलब क्या दुर्दैव क्या हमारा है, इतनी महान वस्तु फ्री में स्वयं भगवान ने आकर हमको दे दी है, फिर भी हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको नींद आती है, हमारा ध्यान भटकता है, हमको नहीं करते हैं, हमको पिक्चर देखने में इंटरेस्ट है लेकिन हमको भगवान का नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं है, माला करेंगे तो नहीं करेंगे प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है, दो दो घंटा टीवी देखते हैं लेकिन माला करो भाई बहुत टाइम नहीं प्रभु जी बहुत मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं हाँ शाम में मॉल में जाकर दो दो घंटा बिताते हैं, लेना है क्या एक पेन, लेकिन 3 घंटा मॉल में घूम रहे हैं, सब वस्तु देख रहे हैं, सबको उठा के माल क्या है, भाव क्या है, सब दिख रहे हैं, और सेल्समैन को पूछते हैं इसका कीमत कितना है, कितना कम करेगा, लेना कुछ नहीं है, सब 3 घंटा घूमते हैं, एक पेन लेके घर पे आते हैं। तो कोई को आलू क्या करते हैं, खाली आलू खरीदना है, उसको 1 किलो आलू खरीदना है, मम्मी ने भेजा है, लेकिन 2 घंटा मॉल में घूम के पैंट शर्ट डेनिम जीन्स टी शर्ट सब देख के आप बोलेंगे उसको एक माला जप करो भगवान के नाम का, नहीं प्रभु टाइम नहीं प्रभु जी दिन रात बिजी रहता हूँ, देखो सब्जी लाने को आया 2 घंटा सब्जी लाने में खर्च किया मैंने तो ऐसा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं दुर्दैव, बहुत बैड लक है हमारा, वो मंद भाग्य बोलते हैं उसको संस्कृत में, लेकिन भगवान ने हमको वो बात दे दी है, उसको अगर स्वीकार करेंगे खाली बस, और अगर हमको विश्वास हो जाएगा कि हमको ये करना है, तो केवल वो करने से हम सब लोग भगवान को प्राप्त करेंगे। फिर चाहे आप लोग कोई काम अलग अलग करते हो, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई चपरासी है, कोई वॉचमैन है, कुछ भी काम करते होंगे, लेकिन भगवान का नाम श्रद्धा से लेंगे तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वैसा नहीं बोलेंगे आप डॉक्टर है क्या तो आपको एंट्री है, डॉक्टर नहीं बाजू में जाओ, ऐसा नहीं है उधर। भगवान का नाम इंसान होकर जिसने ले लिया है, इंसान बनने के बाद में जिसने भी प्रेम से लिया है, एक ही बात आज मैंने सुबह प्रवचन में सुनी थी, आज के प्रवचन में सुनी थी, वो ये है कि भगवान का नाम अगर श्रद्धा से हम लेते हैं तो हम कोई भी होंगे तो भगवान की प्राप्ति हमको जरूर हो जाएगी इस जीवन के अंत में। हमको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थी जीवन में बहुत कोशिश किया भगवान का नाम लोगों को देने का, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने उनका मजाक किया, कुछ लोगों ने उनको चिढ़ाया, कुछ लोगों ने उनको नकल करके दिखाया, अरे कैसे नाचते हरे कृष्णा करके। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं गृहस्थ रहूँगा और ये प्रचार करते रहूँगा तो लोग मुझे गंभीरता से लेंगे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं संन्यास लूँगा, अगर मैं संन्यास लूँगा तो जो मेरा मजाक कर रहे हैं, जो नकल कर रहे हैं, वो मुझे प्रणाम करेंगे क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, और जब मैं प्रणाम करके बोलेंगे मैं कुछ बताऊँगा तो आदर से और रिस्पेक्ट के साथ मैं जो कहूँगा वो करेंगे, और तब मुझे बताऊँगा मैं उनको वही बताऊँगा कि भगवान का नाम लो, लेकिन क्योंकि मैं सन्यासी बनकर बताऊँगा तो मेरे बातों में वजन आएगा, लोग मुझे गंभीरता से लेंगे और जो मैं कहूँगा उसको गंभीरता से सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे। इसलिए विष्णु प्रिया जैसी सुंदर पत्नी, सद्गुण संपन्न देवता समान थी वो, और उनकी माता थी सच्ची माता, ऐसी माता किसको नहीं चाहिए, इतनी प्रेम करती थी माता उनके ऊपर, यशोदा का अवतार थी वो, ऐसी माता और विष्णु प्रिया जैसी पत्नी कौन छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु इतने प्रिय व्यक्तियों को दोनों को त्याग कर देते हैं, अपने परिवार का स्वार्थ छोड़कर विश्व के परिवार का कल्याण करने के लिए अपना निजी परिवार छोड़ देते और संन्यास लेते हैं, वो भी मकर संक्रांति के दिन लेते हैं। तो वो भी दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। क्यों संन्यास लिया? वो तो भगवान है स्वयं, उनकी पत्नी है, उनकी माता है, उनके पिता है, सब परिवार है, नवद्वीप धाम का सब उनका भक्त लोग वहाँ रहते हैं। सबको छोड़ दिया उन्होंने, सबको विरह के सागर में डुबो दिया उन्होंने और संन्यास ग्रहण किया और भारत भर भ्रमण किया उन्होंने। जगह जगह जाकर इंसानों को नहीं, जानवरों को भगवान का नाम दिया। जब झारखंड से वो आ रहे थे और जंगल में उन्होंने जब कीर्तन किया, तो आज भी वहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा, आज भी झारखंड के अंदर शेर के, हाथी के, हिरण के, सांप के, बंदर के पैरों के निशान हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ में कीर्तन किया था। और आज भी उस गांव में जहाँ पर ये कीर्तन हुआ था जंगल में, उस जगह पर कोई प्राणियों में भेदभाव नहीं होता है, प्राणी वैर भाव नहीं होता है उसके अंदर। शेर, हाथी, सिंह, हिरण साथ में रहते हैं, कोई किसका हत्या नहीं करता है। ये बहुत विश्वास रखने के लिए बहुत कठिन बात है, लेकिन यह हकीकत है। महाप्रभु चैतन्य ने वहां पर कीर्तन करके हाथी, घोड़ा, शेर, सिंह और सांप और बंदर सबको गले मिलाकर उन्होंने कीर्तन करवाया। इतना भगवान के नाम के अंदर शक्ति है। तो वो भगवान ने न केवल मनुष्य को, सब जानवरों को भगवान का नाम वितरण करने के लिए भगवान ने संन्यास लिया, हम सब के लिए लिया। ये याद रखना इस बात को, हम सब लोग जो भगवान के अंदर रुचि रखते नहीं हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, हमको अपना परिवार में, पैसे में, जॉब में, सुंदरता में, यश में, कीर्ति में, नाम में बहुत इंटरेस्ट है हमको, फिल्म स्टार बनने में, फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है हमको, भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों तक भगवान का नाम पहुंचना चाहिए, इसलिए बड़ी दया के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। पहले तो अवतार लिया और फिर अपने अवतार की लीला के अंदर भी संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया दुनिया के, हमारे सबके कल्याण के लिए। इसलिए भी मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका त्याग, उनका संन्यास, खुद के लिए आनंद का त्याग, दूसरों के कल्याण के लिए, इस भावना को याद रखे हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए। गोलोकेर प्रेमधना हरि नाम संकीर्तन। ये धन जो है वो केवल श्रद्धा से, ये महामंत्र जप करने से हमको प्राप्त हो सकता है, केवल श्रद्धा के साथ। कोई धन की जरूरत नहीं, कोई सुंदर बनने की जरूरत नहीं, जवान ही होना चाहिए ऐसी जरूरत नहीं, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, अरे नहीं पुरुष की भी जरूरत नहीं, स्त्री भी कर सकते हैं। हाँ, कोई काला है दक्षिण अफ्रीका का, कोई गोरा है इंग्लैंड का, वो भी कर सकता है, कोई अनपढ़ है वो भी कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, कोई बीमार है बहुत हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बड़ी था सालों से टीबी होके अस्पताल में एडमिट है, कोई बहुत बॉडी बिल्डर है, एकदम हेल्दी आदमी है, दोनों आदमी कर सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप अगर MBBS होंगे तो ही कर सकते हैं, अगर आपने PhD किया है तो ही कर सकते हैं, अगर आप हरे कृष्णा के भक्त हैं तो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भाषा बोलने वाले हो, किसी भी देश के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी गांव के हो, कोई भी तरह के पढ़े लिखे हो, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो है। और वो अगर हम नहीं करेंगे तो बोलते ना कि सब कुछ किया लेकिन टाइम पे बस नहीं पकड़ा, गया, फेल हो गए। इस जीवन में बहुत कुछ काम करते हैं हम लोग, पैसा भी कमा लेते हैं और परिवार भी बढ़ाते हैं, शादी करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना पड़ता है। कोई लेके जाता है कोई आदमी, हाँ 10,000 रुपये लेके गया साथ में आगे के रास्ते के लिए ऐसा होता है क्या कभी? नहीं नहीं मैं बहुत दूर जाऊँगा, यहाँ से वैकुंठ बहुत दूर है, रास्ते में खाना पीना लगेगा ना, तो थोड़ा सामान लेके जाऊँगा साथ में, ऐसा होता है क्या कभी? कुछ नहीं, कितना भी पकड़ो रखे ना, पकड़ के रखोगे ना तो हाथ में रहेगा वो सामान और हाथ और बॉडी इधर ही रहेगी और तुम निकल जाएगी कितना भी कोशिश करो एक चीज़ भी यहाँ के हम ले सकते नहीं है। लेकिन आत्मा के साथ में जो आत्मा का धन इकट्ठा किया है वो आपके साथ जाएगा। जो शरीर के सर पर आपने इकट्ठा किया है वो शरीर के साथ यहीं रहेगा, और जो आत्मा के सर पर आत्मा का धन इकट्ठा किया है वो आत्मा जहाँ जाएगी उसके साथ जाएगा। तो वो धन क्या है? आध्यात्मिक धन, अधिआत्मिक, मतलब आत्मा का धन जो है वो है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, ये सब कुछ आपके साथ में जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। अगले जन्म में अगर भगवान के धाम भी नहीं पहुँचेंगे तो अगले जन्म में जो भी आपने प्राप्त किया था लास्ट लाइफ में भगवान के विषय में, वहाँ से आप चालू करोगे। हम देखते हैं ना, हमारे बच्चे कभी कभी बचपन से ही बहुत श्लोक बोल लेते हैं, एकदम अच्छी तरह से भगवान भजन करते हैं, उनको इतनी रुचि है भगवान के अंदर, सब जानते हैं पहले से ही वो, और श्लोक फटाफट याद कर लेते हैं। वो पिछले जन्म का उनका भाग्य रहता है, जहाँ पर छोड़ दिया था उन्होंने लास्ट लाइफ में, वहाँ से आगे आते हैं। आप लोग वैसे ही भाग्यशाली लोग हो, याद बात ये भूलना मत, भक्ति विधान में आ गए हो और भगवान के नाम का परिचय हुआ है, ये पिछले जन्म के पुण्य का फल है। मैं तो, आप कहीं भी काम कर सकते हो ना, कितने हॉस्पिटल है बॉम्बे में, भारत में कितने हॉस्पिटल है, आप लोग यहीं पर आके जॉब कर रहे हो, किसी ने यहाँ पर पढ़ाई भी किया है नर्सिंग का, यहीं पर जॉब कर रहे हैं, ये आपका पिछले जन्म का जो पुण्य कार्य आपने भगवान के विषय में किया है, उसके फल के रूप में भगवान ने आपको ऐसी जगह रखा है जहाँ पर आपको आसानी से भगवान का नाम जप करना आसान हो जाएगा। ये सब गणित है बड़ा, हाँ इसको मत भूलना। इसलिए आपको जो भाग्य अभी प्राप्त हुआ है उसको खोना नहीं, अभी आप पिछले जन्म में इतना मेहनत किया था, अभी आपको मिल रहा है उसका फल, अभी आलस्य मत करना उसको करने में, अरे सो जाएंगे अभी क्या है, भक्ति विधान में तो है ना, नाम भी तो उधर ही है, सब कुछ उधर ही है, अभी इतना जल्दी क्या है, ऐसा बोलेंगे। मृत्यु कब कभी किसी की होगी बोल नहीं सकते कोई, प्लीज़ ये मत सोचना कि हमारी मृत्यु 60 साल के बाद में ही होगी, अभी बहुत साल बाकी है, ऐसा मत सोचना। किसी भी उम्र में कभी भी मृत्यु हो सकती है, ट्रेन के एक्सीडेंट से, ट्रेन से गिरने से, बस से अंदर आने से, हार्ट अटैक से, कुछ खाया पिया तो, फूड पॉइजनिंग से, क्या नहीं हो सकता है, एनी टाइम कोई धक्का लग गया तो, बिल्डिंग से गिर गया आदमी, पतंग, अपने पालघर का लड़का था ना, लड़का 17 ईयर्स का लड़का था, वो 17 ईयर्स खाली पतंग उड़ा रहा था संक्रांति के मौसम में, और छत में था, पीछे 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 गया और गच्ची से गिर गया नीचे, हमारे बड़े प्रभु जी का लड़का, खत्म हो गया। अगर उसने सोच लिया होता कि नहीं नहीं मैं तो 17 ईयर्स का हूँ, मैं कैसे मरूंगा, मैं तो बहुत ज़िंदगी बाकी, लेकिन मृत्यु किसी बोल के आते क्या, नहीं मृत्यु को कोई गारंटी नहीं है। सबसे अनिश्चित और सबसे निश्चित क्या चीज़ है, मृत्यु। अनिश्चित क्यों है, क्योंकि कब होने वाली है पता नहीं है। अनिश्चित क्यों है, ज़रूर होगी वो, 100% होगी। इसलिए बोलते हैं ना, डेथ रेट कितना है, मृत्यु का प्रमाण कितना है, 100% है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, मतलब क्या हो गया, रेट कितना हो गया मृत्यु का, 100%। ये सबको समझना ज़रूरी है। हम कितना भी सुंदर होंगे, जवान होंगे, बहुत अपने ऊपर गर्व करते होंगे, बहुत फेमस होंगे, बहुत धनी होंगे, हाँ सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हमारा रूप, हमारा शरीर, हमारा पैसा, ये सब कुछ छोड़ के ख़त्म होके हमको जाना है एक दिन यहाँ से। लेकिन जो भगवान का नाम लेगा वो तर जाएगा इस सागर से, इस भयंकर जन्म मृत्यु के सागर से बचने वाला वही व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेगा। और वो नाम लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और उनका द्वारा दिया हुआ नाम हम लोग ले रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में आशा है, हम लोग खुश क्यों रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, कष्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंड में हम लोग भगवान के पास जाएंगे, इसलिए हम खुश रहते हैं हमेशा। जितना कष्ट होना है उतना होने दो, इतना हिसाब किताब है पूरा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड में आज से प्रैक्टिस करेंगे, एंड तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड में उनका नाम याद करेंगे तो जितना भी कष्ट हो गया हुआ वो वर्थ होगा, खत्म हो जाएगा, हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। यही सिंपल फार्मूला है, और कोई फार्मूला नहीं है, सबसे आसान सबसे श्रेष्ठ फार्मूला यही है, भगवान का नाम लो। जहाँ कहीं भी रहो वहीं रहो, जो काम कर रहे हैं वही करते रहो, लेकिन भगवान का नाम जोड़ लो और रोज करो। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो मुझे व्यक्ति एक मिला, मुझे पूछ रहा था आप जप करते हो कितना करते हो, मैं बोला उसको कितना करता हूँ, उसने कहा कि केवल 2 घंटा 16 माला जप नहीं करना है हमको जीवन में, हमको अखंड भगवान का नाम लेना है। जैसे हमारे ग्लास के अंदर ना हम लोग होता है गोटी, होता गोटी डालते हैं गोटी, फिर उसके अंदर जल डालते हैं, जल वहाँ पर जाएगा ना पानी के अंदर जाएगा ना, गोटी से ग्लास भर गया है, फिर डालेंगे जल डालेंगे तो फिर भी जल लेगा ना उसके अंदर, फिर जल से भी ग्लास भर जाएगा, तो हर गोटी जो है वो जल से आवृत्त होगी ना, जल से कवर हो जाएगी, इज इट राइट। जो गोटी है ना पूरे सब जगह से जल से भरी हुई है, तो वो जो गोटी है ना हमारे काम की तरह है, हमारे कर्तव्य की तरह है। हम कोई पिताजी का कर्तव्य कर रहा है, माताजी का कर रहा है, कोई पुत्री का कर रहा है, कोई बहू का कर रहा है, कोई समाज का कर रहा है, कोई राज्य का नेता बना हुआ है, बहुत सारे कर्तव्य हम पूरे करते हैं, वो सब गोटी जैसा है, कई गोटियाँ हैं ग्लास के अंदर। भगवान का भजन कैसा है, पानी जैसा है, सारे कर्तव्यों को घिरा हुआ है वो, कोई भी कर्तव्य करेगा तो भगवान के नाम के साथ ही करेगा। वो पिताजी बनेगा तो भी भगवान के नाम से ही पिताजी बनेगा, पति बनेगा उसका कर्तव्य करेगा तो भगवान के नाम से करेगा, देश का हित करेगा, हाँ कंपनी में काम करेगा, कहीं नौकरी करेगा, सब करेगा भगवान के ही भावना में करेगा। तो वो जल जैसा है, सब जगह कवर करके रखा है उसने, हर गोटी जो है वो जल से घिरी हुई है ना, एवरी मार्बल इज कवर्ड विथ वाटर। तो हम लोगों को अपने जीवन में ऐसे भगवान का नाम और भजन जोड़ देना चाहिए, आगे से पीछे से सामने से पीछे से सब जगह से भगवान का नाम, बीच में हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, दैट इज वॉट इज इम्पोर्टेंट। और महाप्रभु जी का संन्यास लेना तब सफल होगा जब हमारे में से हर व्यक्ति उनका नाम लेंगे, उनका नाम का जप करेंगे। उन्होंने कहा है पृथ्वी से आते नगराथर्व नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैव मोर नाम। पृथ्वी पर कलयुग में ऐसा समय आएगा जिसमें हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर कोने कोने में भगवान का नाम जपा जाएगा। हम उसके भाग्यवान हकदार हैं, हम भी उसके हकदार हैं कि हमको भी मिल रहा है वो नाम। अगर नहीं लेंगे आप तो हमारा दुर्भाग्य है, आगे किसी को मिलेगा, लेकिन बटेगा जरूर वो, जो लेने वाला होगा वो भाग्यवान होगा, नहीं बोलेगा वो दुर्भाग्य होगा, और जो लेगा वो इस जीवन के अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। तो दो घटना हुई थी, एक भीष्मदेव का मृत्यु आज के दिन मतलब संक्रांति के दिन, और एक चैतन्य महाप्रभु का संन्यास। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, मकर संक्रांति के ऊपर आपके लिए शुभकामना, और भगवान का नाम आप सब लोग उस गोटी में घिरा हुआ जल की तरह अपने कर्तव्य करते करते लेते रहेंगे, यही आपकी आपके लिए मेरी शुभकामना है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।